हवेली के उस पुराने विशाल आंगन में सुबह की हल्की धूप फैल चुकी थी, लेकिन माहौल अजीब सा भारी था, जैसे हवा भी जानती हो कुछ होने वाला है। दूसरी तरफ शहर की बीचोंबीच बनी एक सुषमा देवी की हवेली में सुप्रिया तेज कदमों से कमरे में आई। अविनाश खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में फोन और चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान। ये क्या किया तुमने? सुप्रिया की आवाज घबराई हुई थी। अविनाश ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, क्या किया मैंने? कल रात तुम्हें उस आदमी से बात करने की क्या जरूरत थी? वो लगभग चिल्ला पड़ी। अब अविनाश ने धीरे धीरे मुड़कर उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्की चिढ़। किस आदमी की बात कर रही हो? वही, वो सरफिरा। सुप्रिया की आवाज कांप रही थी। तुम जानती हो वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है, कितना खतरनाक है? उससे पंगा लेना ठीक नहीं है। वो उसके पास आ गई। मुझे डर लग रहा है अविनाश, कहीं वो हमसे सब कुछ छीन ना ले। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई, फिर अविनाश हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी सुकून देने वाली नहीं थी। डर? उसने धीमे से कहा। तुम्हें डर लग रहा है? वो उसके बिल्कुल सामने आ गया। डर मुझे लगना चाहिए, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। उसकी आंखों में अचानक जलन उभर आई, पुरानी गहरी जलन, और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं। उसने दांत भींचे। वो जितना दिखता है ना, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। सुप्रिया चुप हो गई। अब वो समझ रही थी, ये सिर्फ डर नहीं, कुछ और भी है, कुछ बहुत पुराना। अविनाश धीरे धीरे सोफे पर बैठ गया और सिर पीछे टिकाया। तुम जानती हो, उसने धीमी आवाज में कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? सुप्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। कि मैं उसका बड़ा भाई हूं। उसने आंखें बंद कर ली और अतीत जैसे सामने आ गया। मौसी जी हमेशा कहती थी, मेरा विशु ये, मेरा विशु वो। उसके होंठ कस गए। हर बात में, हर जगह वो ही परफेक्ट था। और मैं, उसने खुद पर हंसते हुए कहा, बस एक नाम। कमरे की हवा भारी हो गई। जब भी हम कहीं जाते थे, लड़कियां उसे देखती थीं, माँ उसकी तारीफ करती थीं, पापा भी। उसने आंखें खोली, अब उनमें सिर्फ गुस्सा था। और मैं हमेशा पीछे, हमेशा कम। उसने मुट्ठी भींच ली। अब नहीं, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि बड़ा कौन है। हवेली में सब लोग डाइनिंग हॉल में बैठे थे। सुषमा देवी कुर्सी पर बैठी थीं। चेहरे पर अब पहले से ज्यादा सुकून था। श्यामली उनके पास खड़ी उनके लिए चाय डाल रही थी। विश्वनाथ सामने, लेकिन उसकी नजरें हर पल दरवाजे की तरफ जा रही थीं। आर्यन भी वहीं था, थोड़ा सतर्क। अक्षरा एक कोने में खड़ी सब कुछ चुपचाप देख रही थी, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रही, समझ भी रही हो। माहौल ऊपर से बिल्कुल सामान्य, हल्की बातें, चाय की चुस्कियां, लेकिन अंदर हर कोई कुछ ना कुछ सोच रहा था। तभी दरवाजा खुला और अंदर आया अविनाश। उसके कदम धीमे थे, लेकिन हर कदम में एक अजीब सा आत्मविश्वास। उसकी आंखों में एक नया इरादा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुषमा देवी ने उसे देखा, चेहरे पर हल्की सी सख्ती आ गई। माँ, अविनाश की आवाज इस बार नरम थी, घर चलो। सब चौंक गए, सब वहां बहुत परेशान हैं। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, आपके बिना घर सूना हो गया है। विश्वनाथ मन ही मन हंसा। कल रात फोन पर धमकी दे रहा था और आज ये नाटक। उसकी नजरें सख्त हो गईं। श्यामली आगे आई, चेहरे पर शांति थी लेकिन आंखों में दृढ़ता। आप बड़े हैं, उसने बहुत शांत आवाज में कहा, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। अविनाश रुक गया। उसने उसे ध्यान से देखा, लेकिन एक बात साफ साफ जान लीजिए। श्यामली ने सीधा उसकी आंखों में देखा, मौसी जी यहीं रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। कमरे की हवा जैसे जम गई। अविनाश कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अचानक उसने आगे बढ़कर श्यामली के दोनों हाथ पकड़ लिए। प्लीज, उसकी आवाज अचानक बदल गई, ऐसे मत कहो। ये सब इतना अचानक हुआ कि एक पल के लिए सब स्तब्ध रह गए, लेकिन अगले ही पल विश्वनाथ और आर्यन दोनों खड़े हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था।
विश्वनाथ तेजी से आगे बढ़ा और जोर से अविनाश का हाथ छुड़ाया। हद में रहो, उसकी आवाज ठंडी थी लेकिन खतरनाक। अविनाश पीछे लड़खड़ा गया लेकिन नजरें अब भी शामली पर थीं। विश्वनाथ उसके बिल्कुल करीब आ गया। वरना, उसने धीरे से कहा, मौसी जी का पता नहीं लेकिन तुम्हारी लाश जरूर यहां से निकलेगी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। ये धमकी नहीं थी, ये सच था। अविनाश कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। आर्यन आगे आया और बिना कुछ कहे उसे दरवाजे की तरफ धकेल दिया। निकलो यहां से, उसकी आवाज सख्त थी। अविनाश पीछे हटता गया लेकिन जाते जाते भी उसकी नजरें सिर्फ एक ही जगह थीं, शामली। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई शिकार देखता हो, जैसे वो उसे समझ रहा हो या शायद कुछ और सोच रहा हो। दरवाजे के बाहर निकलते ही उसने एक बार फिर मुड़कर देखा और हल्की सी मुस्कान दी, फिर चला गया। कमरे में कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ सबकी सांसें सुनाई दे रही थीं। शामली थोड़ा पीछे हट गई, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। विश्वनाथ ने तुरंत उसकी तरफ देखा, तुम ठीक हो? उसने हल्का सा सिर हिलाया, हाँ। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। अक्षरा अब भी कोने में खड़ी थी, उसकी नजरें सब पर घूम रही थी लेकिन खासकर शामली पर। उसने धीरे से खुद से कहा, ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। उसकी आंखों में एक चमक आई जैसे उसने कुछ पकड़ लिया हो। दूसरी तरफ हवेली के बाहर अविनाश अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। उसने जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल किया। गेम शुरू हो चुका है, उसने धीमे से कहा। अब अगला कदम, उसने हवेली की तरफ देखा, आंखों में ठंडा इरादा। ऐसा होगा कि सब कुछ अपने आप मेरे पास आ जाएगा। कॉल कट गया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, बैठते हुए एक बार फिर मुस्कुराया। विशु, उसने धीरे से कहा, अब मजा आएगा। और हवेली के अंदर सबको एक एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अब शुरू हुआ है।